अब अगला टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है और बाप है 62, सुत्रतुल इमामी सुत्रतुल मन खल्फहू, इमाम का सुत्रा मुक्तदियों के लिए भी है। ये बताइए कि सुत्रा किसको कहते हैं? सजदे की जगह के करीब होगा जी, यानी आपके और सजदे की जगह के बाद में, बहुत दूर भी ना हो और बिल्कुल, बाज दफा आपने लाइन भी खींची जब और हालात नहीं हुए, लेकिन आम तौर पे इसके लिए हुक्म क्या है कि ये तकरीबन 1 फुट के करीब हो, कोई भी चीज आप रख सकते हैं जी। ठीक है, ये भी ठीक है, बाज दफा इससे भी छोटी चीज होती है, यानी मुराद ये कि, तो यहां आप देखिए बहुत ही, इन हदीसों को पढ़कर आपको खुशी होगी क्योंकि जब आप जमात में नमाजें पढ़ते हैं तो खासतौर पर जो बच्चे आगे से गुजरते हैं, तो अगर ये हुक्म ना होता तो सबकी नमाजें टूट चुकी होती। और आप नोट करेंगे जितना शैतान नमाज के बच्चों को आगे लाता है शायद ही कभी लाए। बच्चे तो बच्चे, बड़े बच्चे अभी ये रमजान की नमाजों में और ईद के दिनों में भी मैंने देखा कि हम नमाज पढ़ सब खेल रहे हैं, जूं ही नमाज शुरू करें बच्चे, एक बच्ची वो यूं से आके यूं आ रही है, अब आप इग्नोर करते हैं वो दोबारा आ रही है, फौरन पकड़े हाथ पीछे कर दें, क्योंकि हदीस में कि शैतान दिलों में डालता है बच्चों के कि नमाज के आगे से गुजरो। तो अगर इमाम के आगे सुतरा ना हो तो हमारी तो नमाजें टूट अट चुकी हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जमात की नमाज में जब इमाम अपने आगे सुतरा रख ले तो फिर जो पीछे पढ़ने वाले लोग हैं यानी मुक्तदी, उनको भी जरूरत नहीं रहती। अन इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इजा खरज यौम अलईदी, इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह जब ईद के दिन नमाज के लिए निकलते तो क्या करते, अमरना बिहरबतिन फतूदाउ बैना यदेही, तो बर्चा, बर्चा क्या होता है, एक छुरी होती है जिसका आगे से रेड़ा होता है ऐसा, क्योंकि अरब लोग जब सफर करते थे तो इस तरह के हथियार साथ लेकर चलते थे, रेगिस्तान था, जंगल कहीं रास्तों में आते कोई कीड़ा निकल आता, सांप आता, कुछ भी, तो अपने दिफा के लिए चीजें रखते थे। और वैसे भी वॉशरूम यूज करने के लिए जब मट्टी को नरम करना होता तो इस बर्चे से मट्टी को नरम करते, घड़ा सा खोदते और वहां फारिग होते। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया बर्चे के मुतालिक, तब वो आपके सामने गाड़ दिया जाता तो आप इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते और लोग आपके पीछे नमाज पढ़ते। फयुसल्ली इलैहा वन्नास वराहू वकान यफअलु ज़ालिका फिस्सफरी, और ये सब कुछ दौरान सफर ही होता। फमिन थम्म तख़ज़हल उमराउ, चुनाचे मुसलमानों के खुलफा ने इस वजह से बर्छा साथ रखने की आदत अपना ली है। यानी इब्ने उमर इस बात पर अफसोस कर रहे हैं कि जो बड़े सरदार बाद में बने वो बर्छा तो साथ रख रहे थे लेकिन नमाज को नजरअंदाज कर दिया, जो कि इस्लाम की निशानी, यानी सफर में नमाज नहीं पढ़ रहे या डिले करें लेकिन एक निशानी के तौर पर, सिंबल के तौर पर ये बर्छा रखा करते थे। अन अभी जो हई फत रदी अल्लाह नबी सल्लम भीम बिल बतखाई व बैन यदही अनजतुन, हजरत अबू जो हैफा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने वादी बतखा में लोगों को नमाज पढ़ाई और आपके सामने नेजा गाड़ दिया, आपने क्या किया, अज़ुहर रकअतैन वल असर रकअतैन, आपने जोहर की भी 2 रकअतें अदा की और असर की भी, क्यों की, चूंकि आप सफर में थे। बिल्कुल, यमुर्रु बैन यदैहिल मरअतु वल हिमार, आपके सामने से औरतें और गधे गुजर रहे थे। तो क्या पता चला कि नसब करदा सुतरे के आगे से यानी उसके बाद से लोग गुजर रहे थे लेकिन वो बर्छी या वो बीच में रुकावट बन गया। क्या जरूरत है इसकी, इतनी सी चीज से क्या होता है, आप जवाब दें। रूल, डिसिप्लिन
जब हमारे सामने सूत्र होता है तो हम सब
जी।
पहले ही देते हैं।
देखिए ये भी बात बिल्कुल सही है लेकिन आप देखिए कि ओवरऑल बात क्या है कि रूल इज रूल। जैसे आप देखिए हजरत अली कहते हैं कि अगर दीन में अकल का दखल होता तो मसा जो था वो पाओं के नीचे होता, क्योंकि कुछ ना कुछ मट्टी कारपेट से या रोड से लगेगी तो नीचे लगेगी लेकिन मसल ऊपर है। तो अब एक छोटा सा सुथरा दब औरत आगे से गुजरे, ये रूल है, दैट्स इट। तो जहां दीन में अकल आने लगे ना बोले। फिर आगे देखिए कि कद्र मुसल्ली व सुतरा, सुतरे में फासले की मकदार क्या हो, यह अब उस सवाल का जवाब आ गया जो शुरू में उठाया गया था। अन सहलिन रदी अल्लाह अन्हु काला कान बैन मुसल्ली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैनल जिदारी ममुर्रु शातिन, सहल रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह की जाय नमाज और सामने की दीवार के दरमियान इस कदर फासला था कि एक बकरी गुजर सकती थी। सामने की दीवार के यानी बेस्ट सुतरा क्या है, दीवार आपके सामने हो। जैसे अगर इस रूम में इमाम नमाज पढ़ाएं और मुक्तदी हैं तो क्या करेंगे, बीच में से शुरू करें, नहीं, इमाम यहां खड़े हो जाए, ये दीवार उनका सुतरा खुद ही बन गई। اور باقی نمازی اس سے پیچھے ہوں گے. تو ایک بکری گزر سکتی تھی, یعنی بہت تھوڑا فاصلہ تھا ہونا چاہیے. اور ایک روایت میں نمازی سترے کا درمیانی فاصلہ کر یہاں تک کونی تک, کہہ سکتے ہیں کہ جہاں آپ کھڑے ہیں اسے 3-3.5 فٹ تک سترا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کھڑا. پھر اگلا باب ہے صلاۃ الی الانزتی, نیزے کی طرف نماز پڑھنا. ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته, حضرت انس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو کیا ہوتا, تبعتہ انا وغلام, تو میں اور ایک لڑکا آپ کے پیچھے پیچھے جاتے, ومعنا اکازتن, اور ہمارے پاس ایک نوک دار لکڑی ہوتی, او اسا یا ڈنڈا ہوتا, او انزتن یا نیزہ ہوتا, ومعنا اداوتن, اور ہمارے پاس پانی کی ایک چھاگل یعنی جس میں آپ پانی پیتے تھے پیالہ سا بھی ہوتا. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ, پھر جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوتے, نَاوَلْنَاهُ لِدْوَاتَ, تو ہم چھاگل آپ کو دے دیتے. آپ دیکھیے کیسے ان کے سفر ہوتے تھے, میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے تو کہیں سفر کے بیگ ہیں, کہیں کیری آن ہے, کہیں لیپ ٹاپ بیگز ہیں, کبھی کچھ ہے. آپ جاتے تو آپ کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوتی, اور یہ سب چیزوں کی کوئی نیت مقصد ہوتا تھا. چھاگل میں پانی پینا پڑ سکتا ہے, ایزا مار کے کسی جانور کے حملے کو روکا جا سکتا ہے, اسی طرح لکڑی سے سہارا لیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی سفر میں یہ ضروری چیزیں اپنے ساتھ رکھتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سامنے دیوار نہ ہو تو کیا ہم پھر کسی ستون کی آڑ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو بھی سن لیجئے گا. باب ہے الصلاۃ الی الاسطوانتی, ستون کی آڑ میں نماز پڑھنا. عن سلمۃ بن اقوین رضی اللہ عنہ انہ کان یصلی عند الاسطوانتی التی عند المصحف, حضرت سلمہ بن اقوہ سے روایت ہے وہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا. فقیل لہو, پھر ان سے پوچھا گیا, یا ابا مسلم, اے ابو مسلم, یہ کیا تھی ان کی کنیت تھی ان کی, اراکا تتحر الصلاۃ عند, کہا ابو مسلم تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ قال, تو کہنے لگے, فانی رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحر الصلاۃ عندھا, میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ کوشش سے اس ستون کے وہ سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو گویا کہ اللہ کے نبی کی محبت میں یہی کام کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھے کہ حضرت عثمان کے دور کی بات تھی, جبکہ قرآن مجید صندوق میں محفوظ کر کے ایک ستون پہ رکھا جاتا تھا. جب پہلی دفعہ اس قرآن پاک کا مصحف لکھا گیا تھا نا, تو اس کو ایک ستون میں رکھا جاتا تھا, ایک صندوق میں رکھا اور اس ستون کے پاس رکھا جاتا تھا, اور اس کو استوانت المصحف کہتے تھے. بعض لوگ اس کو استوانت المہاجرین بھی کہتے تھے, کیونکہ مہاجرین وہاں جمع ہوتے تھے. آپ کو قرآن کا کوئی واقعہ یاد آیا اس بات کو سن کر؟ چلیں دوسرا پارہ آخر, تالوت جالوت, ان کے پاس کیا ہوتا تھا وہاں؟ تابوت سکینہ. تو وہ بنی اسرائیل کا تابوت سکینہ تھا, لیکن یہاں آپ انشاءاللہ علوم القرآن آپ پڑھیں گے جب آگے جا کر, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن کے جو مختلف فیزز گزرے ہیں, جب ریٹن فارم میں پہلی دفعہ آیا تو لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی, آج تو ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو جب وہ آیا تو صحابہ پھر اس کو ایک صندوق میں رکھتے اور اس کو پھر ایک خاص جگہ پہ ستون پہ رکھتے, تو اس ستون کا نام استوانت المصحف پڑ گیا تھا. اب تو ماشاءاللہ اتنے قرآن ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک اور ٹاپک ہے الصلاۃ بین السواری فی غیر جماعتی, اکیلے نمازی کا دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا, یعنی پڑھنے والا ایک ہی ہے, ستون دو ہیں, اب کیا کریں؟ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث دخول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ قال, حضرت عبداللہ بن عمر سے رسول اللہ کے کعبہ میں داخل ہونے کی روایت ہے کہ جس وقت, قال فسالت بلالا وحین حرج ما سن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے اندر کیا کیا. یہ حدیث پیچھے بھی آئی تھی نا پچھلے ٹاپک میں, کہ کیسے ان کو تجسس ہوا کہ اللہ کے نبی بیت اللہ کے اندر جا کے کیا کر چکے, اور وہاں بلال آپ کے ساتھ موجود تھے. بڑے بڑے لوگ نہیں موجود تھے, لیکن غریب جو غلام تھے وہ موجود تھے. تو انہوں نے کہا, قال جعل عمودا عن یساره وعمودا عن یمینه وثلاثة اعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة وفي رواية عمودين عن یمینه, हजरत बिलाल कहते हैं कि उन्होंने एक स्तून को तो अपनी दाई जानिब किया। आपको पता है कि बैतुल्ला के अंदर आज भी स्तून है, उस दौर में छह थे, आज तीन है गालिबन। तो एक को दाई तरफ किया, एक को बाई किया, तीन स्तून को अपने पीछे कर लिया और फिर आपने नमाज पढ़ी। इस वक्त काबा की इमारत छह स्तूनों पर थी और एक रिवायत में कि आपने दो स्तूनों को अपनी दाई जानिब किया था। अब वैसे मैं इस मौजू से समझ के, खाना काबा के अंदर तो आपने ऐसा किया, लेकिन यहां कोई जमात करता है बीच में स्तून आते हैं, बाद आप देखते हैं मस्जिदें बड़े बड़े हॉल्स हैं तो बीच में स्तून आता है, तो फिर स्तूनों की जगह को ओवरलुक किया जाएगा। वजह क्या है कि उससे सफ टूट जाती है। आज तुम ख्याल ही नहीं रखते, बल्कि आज अगर आप देखें मस्जिद नबी में जब सिस्टर्स जाती हैं, मर्दों में भी ऐसे ही होगा, तो इतने बड़े बड़े, यानी इस टेबल से इतने इतने चौड़े चौड़े स्तून आते हैं बीच में और हर थोड़ी देर बाद आते हैं, जिसका जहां दिल करता है वो खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि आज उम्मत की जो हालत है वो उसकी सफबंदी से दिखती है। आप खींचते रह जाए, तोड़ते रहे एंड पे, तो फिर खैर लोग जूतों पे भी नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सफबंदी के अपने असूल हैं। अगर बीच में कहीं स्तून आ रहा होगा तो उसको अवॉइड किया जाए, ऐसी जगह पे कर दिया जाए कि उससे सफ ना टूटे। बेसिकली ये बात है, थोड़ा पीछे करके उससे खड़े हो जाएं तो चले पीछे ले सजदा करेंगे तो में भी अनफ जगह होगी, लेकिन यह कि बहरहाल सफ बंदी की बड़ी अहमियत है। क्या सवारी पे भी नमाज पढ़ेंगे तो भी सुथरा रखेंगे? इसका जवाब आ गया है, अस्सलात इला राहिलती वल बईरी व शजरी वर राहली, सवारी ऊंट दरख्त और पालान की तरफ नमाज पढ़ना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अन्नहु काना युरीदु राहिलतहु फयुसल्ली इलैहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को चौड़ाई में बिठाते फिर इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते। इमेजिन करें कैसे, यानी आपका ऊंट था, आप ऊंट को उतरते फिर ऊंट को आड़ा बिठाते, मसलन ये देखिए कि ये किबला रुख हो जिधर आप लोग बैठे हैं, तो ऊंट को सीधा नहीं करते, आप ऊंट को यूं करते और उसके मिडल में फिर खड़े होके नमाज पढ़ लेते थे। बात समझ? तो वो ऊंट एक किस्म का आपके लिए क्या बन गया, सूत्र बन गया। नाफे से पूछा गया, जब सवारियां चरने के लिए चली जाती तो इस वक्त क्या करते? तो उन्होंने कहा कि आप इस पालान को सामने कर लेते और इसके आखिरी या पिछले हिस्से की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते। और इब्ने उमर का भी यही अमल था, यानी वो जो किजावा से ऊपर होता है ना लकड़ी का, जिसके साथ बैठते हैं, तो मकसद यह कि कुछ भी करना पड़े लेकिन आगे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, ये मतलब। इसी तरह से अब एक और भी है, चारपाई है या आपके कमरे में बैठकर रुख ऐसे है कि सामने बेड आ रहा है तो क्या करेंगे? तो सलात उल सरीरी, चारपाई की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। अनायशा रजी अल्लाह अनहा कालत, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अनहा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, तुम लोगों ने तो हमें गधों के बराबर कर दिया, हालांकि मैंने अपने आप को देखा चारपाई पर लेटी होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और चारपाई को अपने और किबले के दरमियान कर लेते फिर नमाज पढ़ लेते। मुझे आपके सामने होना बुरा मालूम होता, इसलिए पाइंती यानी पाओं की तरफ से खिसक कर लिहाफ से बाहर हो जाती। ये क्या बात है, यानी आज आप देखिए कि हजरत आयशा का ये कहना कि तुमने गधों पे, तो असल में हजरत आयशा लोगों की इस बात पर नाराज होती कि औरत जब नमाजी के आगे से गुजरे तो नमाज टूट जाती है, क्योंकि जैसे कि कुत्ते के और गधे के आगे गुजरने से टूट जाती है, तो वो इस बात पे बताती थी। फिर इसका हल क्या है, लेटा हुआ बच्चा, बंदा, मर्द, औरत, जो भी सोया है या लेटा हुआ है, आप बेड पे नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बेड की पीछे की जो बैक होती है ना वही सुतरा बन जाती है। अब आप कहते हैं अच्छा जी इतनी मसला के कहीं और पढ़ लें, आपके लिए तो वाकई कोई मसला नहीं है, इतने बड़े कमरे हैं कहीं भी साइड पर पढ़ लें, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां कमरा ही इतना छोटा है कि जायनमाज डालने की जगह ही इतनी है कि आगे आपके बेड है। कई कमरे ऐसे हैं कि जूता बाहर उतार के बेड पे जाएं और बेड से ही वापिस आ जाएं। तो दीन सबके लिए है ना, घर छोटे हों या जगह की तंगी हो तो सामने बेड बिछा हो, बेड पे कुछ सोया भी हो तो भी नमाज वहां हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब है। अब कोई नमाज पढ़ते हुए आपके आगे से गुजरे तो आप उसके लिए क्या करें? और इस हदीस को गौर से सुने और फिर इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जब मुसलमानों की आंखें खोल दे। लोग बहुत माइंड करते हैं जब उनको ऐसी चीजों से रोका जाए, हालांकि आगे से गुजरने वाले को रोक देना चाहिए। कैसे? यरुद्दुल मुसल्ली मन मर्र बैन यदैही, नमाजी अपने सामने से गुजरने वाले को रोकेगा। हाथ से रोकना पड़े या कैसे? अन अबी सईद अल खुदरी जी रदी अल्लाहु अन्हु अन्नहु काना युसल्ली फी यौमिल जुमाती इला शैइन यस्तुरुहु मिनन नासी, अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि वह जुमातुल मुबारक के दिन किसी चीज को लोगों से सुतरा बनाकर नमाज पढ़ रहे थे। अब कुछ भी रखा होगा, बस सूत्रा बनाया था अभी, मोईतिन आई यजताज बहन यदई ही, तो अबू मोईत के बेटों में से एक नौजवान ने इनके आगे से गुजरने की कोशिश की, फदफा अबू सईद फी सदरी ही, तो अबू सईद ने इसके सीने से इसको धकेल कर रोकना चाहिए, यानी उसको ऐसे हाथ मारा उसके सीने पे के पीछे हो जाए, फनजर शाहबू, तो उस नौजवान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फलम यजित मसागन इल्ला बेना यदई ही, लेकिन आगे से गुजरने के अलावा उसको कोई रास्ता ही ना मिला, क्या करे, फआद लियतजाजा फदफा हो अबू सईद अशद्द मिन अलऊला, तो वो फिर एक तरफ से निकलने के लिए वापस कोशिश की, तो अबू सईद ने पहले से भी ज्यादा जोर से उनको धक्का दिया, फनाल मिन अबी सईद सुम दखल अला मरवान फशका इलैही मा लकिया मिन अबी सईद, इसने इस पर अबू सईद खुदरी को बुरा भला कहा, और इसके बाद मिरवान जो खलीफा थे उनके पास पहुंच गए और अबू सईद से जो मामला पेश आया इसकी शिकायत की, अबू सईद भी इसके पीछे मिरवान के पास पहुंच गए, मिरवान ने कहा जनाब अबू सईद खिदरी तुम्हारा और तुम्हारे भतीजे का क्या मामला, यानी उन्होंने इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, क्या मामला, काल समेतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलू, तो हज़रत अबू सईद ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है, इज़ा सल्ला अहदुकुम इला शैइन, जब भी कोई नमाज पढ़े तुम में से कोई एक, यस्तुरुहु मिनन नासी, तो उसको लोगों से कोई चीज सुथरा बना लेनी चाहिए, यानी लोगों से छुपके पढ़े, फरद अहदुन यतजाज बैन यदैही फल यदफाहु फैन अबा फल युकातिलहु फैन नमा हुआ शैतान, फरमाया कि तुम में से जब कोई किसी चीज को लोगों से सुथरा बनाकर नमाज पढ़े, फिर कोई इसके सामने से गुजरने की कोशिश करे तो इसे रोके, अगर वो ना रोके तो इसे लड़े, क्योंकि वो शैतान है। अब लड़ाई कौन सी करनी है जी, तीरों से तलवारों से, सख्ती से रोकना मुराद है, क्योंकि देखिए जहां शुरू से लोगों को ये सब पता होगा वो तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन जिनको पता नहीं होगा वो तो फिर इस चीज के ऊपर माइंड करेंगे। तो बहरहाल ये सारी चीजों को पढ़ने के साथ हमें ये एहसास हो गया कि दीन में हर चीज का एक हुक्म मौजूद है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, और मुझे ये सब पढ़ते हुए याद आ रहा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों मैं तुम्हें ऐसे दीन पे छोड़ के जा रहा हूं कि जिसकी रातें उसकी दिनों की तरह रोशन है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हमें ये चीज समझ नहीं आई और वो चीज समझ नहीं आई, हर चीज को समझने के लिए क्या चाहिए, इल्म हासिल करना है। एक दो रिवायतें और हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का नमाज का टॉपिक पूरा हो जाएगा। कोई सवाल जो बात अभी हमने की उससे आप पूछ लीजिए।
ये लोग फिर आगे से बचाना शुरू हो जाते हैं तो फिर...
जी ये बहुत अहम सवाल है कि सुन्नत जब पढ़ते हैं मस्जिद में फर्ज नमाज के बाद लोग आगे से गुजरते हैं तो इसमें आपकी गलती है। सहाबा कराम जो ही सुन्नतें पढ़नी होती तो वो पिलर्स को ढूंढते थे, कभी भी बीच में खड़े होकर सुन्नतें ना पढ़े, इल्ला ये कि फिर आपके पास कोई इतना मजबूत सुथरा हो कि लोग गुजर सकें, तो है बगैर सुथरा रखे आप सुन्नत पढ़ेंगे तो लोग आपके आगे से गुजरेंगे तो इससे आपकी नमाज में हरज होगा। अगला टॉपिक है इस्मुल मारी बैना या दिल मसल्ली, नमाजी के आगे गुजरने पर वईद। ये हदीस आप देखिए कि आप अपने लिए भी याद रखें और ऐसे लोग जो ना रुके उनको फिर बताइए तरीके से क्या है। अन अबी जुहैमिन रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, अबू जुहैम से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاسم لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه قال راوي لا ادري اقال 40 يوما او شهرا او سنه, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला ये जानता हो कि इस पर किस कदर गुना है तो आगे से गुजरने की बजाय वहां 40 तक खड़ा रहने को पसंद करता। हदीस के रावी कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि 40 दिन कहे, महीने कहे या साल कहे। इशारा किस चीज में कि ना गुजरे, यानी इतना गुनाह है नमाजी के आगे से गुजरना कि बंदा 40 साल या महीने या दिन खड़ा रहे लेकिन आगे से ना गुजरे, ठीक है। और इब्ने हबान की एक रिवायत में 100 साल के अल्फाज भी आते हैं। क्या पता चला कि नमाजी के आगे से गुजरना हराम भी है और बहुत बड़ा गुना भी है। सोए हुए के पीछे नमाज पढ़ना, इसमें आपके बहुत सारे सवालात के जवाब मिलेंगे। अनायशा रदियल्लाहु अन्हा कालत काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली व अना राकिदतुन मोतरिदतुन अला फिराशिही फ इज़ा अरादा युतिरा अय क़ज़नी फ औतरतु, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بستر پر عرض عرض کہتے ہیں چڑھائی ویٹ وہی جو بھی بات ہوئی تھی عرض کے بل سوئے رہتی پھر جب آپ وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے جگا لیتے تو میں بھی وتر پڑھتی کیا پتہ چلا حجرہ عائشہ کتنا چھوٹا تھا اور دوسری بات ہے کہ خود تہجد پڑھ رہے بیوی کو نہیں اٹھا رہے بیوی کو ڈسٹرب نہیں کرے جبکہ وہ اپنی خوشی سے نہ اٹھے لیکن وتر کے لیے پھر آپ نے ان کو بھی تیار کیا تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب شوہر بیوی دونوں دین کو سمجھنے والے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتے ایک دوسرے کے اوپر اس چیز کو برا نہیں لیتے ٹھیک ہے اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ظاہر ہے کہ سوئے ہوئے کے سامنے جب آپ پڑھ رہے ہوتے تو نماز ہو جاتی ہے تو اگر آج بھی کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو وہ نماز اس کی ہو جائے گی تو جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا ڈسٹریکشن ہی ہو یا بیوی سے بڑی محبت ہے تو نماز میں بھی تم میرے سامنے ہی لیٹی رہو یہ مراد نہیں ہے لیکن حالات اور مجبوری کے تحت جیسا وقت ہو ویسا کیا جا سکتا ہے جی ان کا سوال ہے کہ کیا سترا لازمی ہے اگرچہ گھر پر کوئی بھی نہ ہو اگرچہ گھر پہ کوئی بھی نہ ہو جنات بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی ہو سکتے ہیں جانور تو سترا رکھا جائے گا اگلا ٹاپک ہے اذا حمل جاریتن صغیرتن علی عنقہ فی الصلاۃ دوران نماز چھوٹی بچی کو گردن پر اٹھا لینا کون ہے جو بچوں کو اٹھا کے نماز پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اور نواسی کو بعض دفعہ نماز کی حالت میں بھی اٹھاتے تھے آج تو ہم کہتے ہیں لو مولوی صاحب کا تو پروٹوکول خراب ہو جائے گا لیکن اس طرح پڑھائی جا سکتی ہے ان ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی حضرت ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ حضرت امامہ کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے کون تھی یہ نواسی تھی ڈاٹر ان لا تھی آپ کی بیٹی کی بیٹی جو آپ کی لخت جگر حضرت زینب اور حضرت ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس کی بیٹی تھی جب سجدہ کرتے تو اس کو اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے تھے کتنا اچھا لگتا ہوگا ان کو ہاں سبحان اللہ فَإِذَا سَجَدَ وَدَاحَ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ذرا حرکت بھی تو ہوتی تھی نا اس کو اٹھانے میں اٹھاتے تھے تو اتنی تھوڑی بہت حرکت ہو جائے تو اسے نماز پھر نہیں ٹوٹتی عورت کا نمازی کے بدن سے گندگی اتار پھینکنا المرأت تترخ عن المصلی شیئا من الاذى ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزر چکی کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قریش علیہ السلام صح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اتبا اصحاب القلیب لعنتا ابن مسعود سے روایت ہے اور حدیث پیچھے گزر چکی ہے 178 میں کہ اللہ کے نبی نے قریش کے لیے بد دعا کی جس دن انہوں نے رسول اللہ پر بحالت نماز اونٹنی کی اوجڑی ڈال دی تو حضرت فاطمہ نے اسے آپ سے ہٹایا تھا اور اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ پھر ان کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈالا گیا اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اس کنویں والوں پر لعنت کی گئی تو حضرت فاطمہ بیٹی تھی نا عورت بھی تھی بچی تھی جو بھی تو اللہ کے نبی سے نماز کے دوران یہ اٹھا رہی تھی کہ اگر آپ کے جسم پر کوئی گندگی ڈال دے یا کچھ لگی ہوئی ہو اور نماز کے دوران کوئی عورت اس کو اٹھاتی ہے ذرا وہ بیٹی ہوگی بہن ہوگی بیوی ہوگی تو کوئی حرج کی بات نہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پھر وہ تو نماز میں ہر وقت ان کا وضو ہی ٹوٹتا رہے گا تو یہ تھا کتاب الصلاۃ الحمدللہ پورا ہوا تو جزاک اللہ خیر اگلا ٹاپک بہت اہم ہے مواقیت الصلاۃ یہ جو آج ہمیں نمازوں کے اوقات پتہ کرنے میں گھڑیاں اور سب چیزیں اور اس کے باوجود کئی مختلف سوالات ہیں جو اس مسجد میں نماز ہوگی اس میں نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس میں ڈیٹیل سے یہ سب کچھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ